SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। कुछ महीनों से चली आ रही कड़वाहट के बाद अब भारत और मालदीव के रिश्तों में सुधार होता दिख रहा है। मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैजल वेलकम इंडिया पहल के तहत पर्यटन रोड शो की श्रृंखला शुरू करने के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य 3 प्रमुख शहरों में कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय यात्रियों के लिए मालदीव की स्थिति प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में सुदृढ़ करना है। श्री फैसल भारत की राजधानी दिल्ली में 30 जुलाई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 1 अगस्त और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 3 अगस्त को रोड शो करेंगे। इस रणनीतिक अभियान का उद्देश्य मालदीव और भारत के बीच पर्यटन संबंधों को मजबूत बनाना, संभावित भारतीय आगंतुकों के लिए द्वीप समूह राष्ट्र के आकर्षणों को प्रदर्शित करना है। राष्ट्रपति मोइज़ू की नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत मालदीव के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादास्पद और अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भारतीय सोशल मीडिया पर मालदीव का बहिष्कार अभियान के रूप में प्रतिक्रिया आई थी, जिसके फलस्वरूप इस साल के पहले 4 महीनों में मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या 2023 की इसी अवधि की तुलना में 42% कम हो गई थी और मालदीव को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा था। केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार देर रात एक आदेश जारी कर 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति की, साथ ही 3 राज्यपालों के राज्यों में भी फेरबदल किया। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, मेघालय, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की है। भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है, जबकि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें संवेदनशील राज्य मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। साल के अंत में चुनावों में जा रहे झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों के राज्यपालों का भी केंद्र सरकार ने फेरबदल किया है। झारखंड में भाजपा के उत्तर प्रदेश से पूर्व सांसद संतोष गंगवार को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के सहारे भाजपा OBC में शामिल कुर्मी जाति के वोट साधने की कोशिश करती दिख रही है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में से केवल 33 सीटें ही जीत पाई थी, जिसकी एक बड़ी वजह OBC समाज की भाजपा से नाराजगी भी माना जाता है। महाराष्ट्र में जहां हाल के लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्यकर्ता रहे CP राधाकृष्णन को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजधानी दिल्ली में शनिवार शाम भारी बारिश के कारण करोल बाग स्थित एक प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से IAS की कोचिंग ले रहे 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही 2 छात्राओं के शवों को निकाला जा सका। बाद में एक और छात्र के शव को भी बाहर निकाला गया। गुस्साए छात्रों ने बड़ी तादाद में धरना प्रदर्शन किया और कैंडल लाइट मार्च भी निकाला। दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिकारी अतुल गर्ग ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी।
नहीं देखिए, रेस्क्यू करने में सबसे बड़ी परेशानी ये थी, जब हमें कॉल दी गई थी पूरा बेसमेंट पानी से लबालब भरा हुआ था, सड़क पे भी पानी था, तो जो हम पानी निकाल के सड़क पे कहीं भी फेंकते थे वो पानी वापस जा रहा था। ये जब धीरे धीरे जो है पानी हमारा जो है रिसीड हो गया, मतलब धीरे धीरे अपने आप जब सड़कों और नालियों में कम हो गया, उसके बाद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन में गति आई, मतलब पानी जो है बेसमेंट का कम आ, क्योंकि पानी इतना गंदा था उसमें कुछ दिख नहीं रहा था और उसके अंदर जाना मैनुअली पॉसिबल नहीं था। तो जब पानी थोड़ा कम हुआ, मतलब बेसमेंट की छत से नीचे, तो फिर हमें जो है वो लड़की एक बच्ची मिली, उसके बाद जो और पानी कम हो गया दूसरी बच्ची मिल गई। अभी बस थोड़ी देर मुझे लगता है कि हमें जो है पूरा ऑपरेशन हमारा काम मतलब ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये तो गलती तो ये अब जांच के आदेश दे दिए गवर्नमेंट ने होगी, क्योंकि बारिश बहुत हैवी रेन हुई थी और बारिश में पानी भरता है।
हालांकि हादसे को दुखद बताते हुए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस हादसे को लेकर सियासत भी गर्म है। क्षेत्र की भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस हादसे का ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ा।
ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थी, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले एक सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण।
हैरानी की बात यह है कि करोलबाग के एक निवासी ने 26 जून को राव स्टडी सेंटर की बेसमेंट में कक्षाएं चलाए जाने की शिकायत की थी और हादसे से 5 दिन पहले ही दिल्ली नगर निगम को रिमाइंडर भी दिया था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को घोषणा की है कि यदि सरकार लद्दाख के अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण की मांगों पर बातचीत के लिए नहीं आमंत्रित करती है तो वह स्वतंत्रता दिवस पर 28 दिनों का एक और अनशन शुरू करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में श्री वांगचुक ने बताया कि शीर्ष निकाय लेह और लद्दाख के कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पिछले हफ्ते कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर द्रास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा, हम चुनाव के दौरान सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहते थे, हमें उम्मीद थी कि नई सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी। अगर वे हमारे अनुरोध पर ध्यान नहीं देते हैं और हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाते हैं तो हम 15 अगस्त से विरोध का एक और दौर शुरू करेंगे। आपको बता दें कि मार्च में श्री वांगचुक ने लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत शामिल किए जाने की मांग करते हुए 21 दिनों का उपवास किया था ताकि पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र को लालची उद्योगों से बचाया जा सके। और अब समाचार खेल जगत से। हरियाणा की मनु भाकर ने रविवार को महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खोल दिया है और इस तरह वे ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। मनु 8 निशानेबाजों के फाइनल में 221.7 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। उनके पदक जीतने पर बधाइयों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें स्वयं फोन करके बधाई दी। आइए सुनते हैं पदक जीतने के बाद मनु ने क्या कहा।
It probably gives confidence even if I have heard about somebody like winning a medal on day one. I would be energized too. I would be also confident. Okay, I need to like, you know, push myself. I need to try my best, give my best efforts. So I'm grateful that I could do it for anyone who feels that way.
श्रीलंका क्रिकेट टीम ने महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराकर कप पर कब्जा कर लिया है। रविवार को श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाए। श्रीलंका ने यह लक्ष्य 18.4 ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। श्रीलंका की ओर से कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 43 गेंदों पर 61 और हर्षिता समर विक्रमा ने 51 गेंदों पर नाबाद 69 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा को एकमात्र विकेट मिला जब उन्होंने कप्तान चमारी अट्टापट्टू को क्लीन बोल्ड किया। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।